ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं धीरे से बोल रहा हूँ लेकिन आपको जोर से बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज हमारे एक बहुत ही पुराने मित्र और गुरु भाई जो अभी बरसाने में रहते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं, वो आए और उन्हें दिया राधा रानी का महाप्रसाद। तो आपको लगता होगा मैं जाके खरीदता हूँ मैचिंग सब कुछ, लेकिन लेकिन राधा रानी स्वयं मैचिंग कर देती है। कोई प्लानिंग नहीं था। ये कुर्ता बहुत दिन से उधर इस्त्री करके लटका के रखा था, सोच रहे थे कब पहने कब पहने कब पहने, तो राधा रानी ने उसको मैचिंग भेज दिया, फिर पहन लिया उसको। हरे कृष्णा। और ये जो माला है बहुत ही स्पेशल माला है। मैं चित्रकूट में यात्रा गया था ना अभी दिसंबर में। कितने लोग आए थे आप में से चित्रकूट में? हाँ कुछ लोग आए थे। यस तो आप तो जानते हो ना इसका कहानी। चित्रकूट में जब कथा कर रहा था तो पहली बार एक दिन एक वस्त्र और एक माला आ गई, और जब मैं आखिरी कथा कर रहा था ना तुलसीदास जी के घर के घर में, तुलसीदास जी का जहाँ पर जन्म स्थान है वो एक प्रकार से सेकेंड लास्ट डे था, तो वहाँ पर ये राधा रानी की माला आई। ये इसमें कैसे आपको वर्णन करूँ, इसके पीछे एक एक हर एक एक पांच मोती का लेयर है और बीच में एक अलंकार है, फिर एक पांच मोती का लेयर है और फाइनली ऐसा है। बहुत अद्भुत माला है ये। जो अलंकार है ये राधा रानी अपने दिव्य देह पर धारण करती है, श्रृंगार आरती से लेकर शयन आरती तक। बाकी एक माला मेरे पास है, मैं लेके नहीं आया उसको। वसंत ओढ़, मैं आपको बताया शायद इसके प्रवचन में, नहीं शायद पहले बैच में बताया होगा। ओढ़न षष्ठी नाम की एक तिथि होती है, उसमें ठंड लगना आरंभ होता है, ठंडी की जो मान्यता है शुरुआत ओढ़न षष्ठी से होती है। तो ओढ़न षष्ठी को ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहनना शुरू होता है, वार्म क्लोथ्स, उसका एक मुहूर्त है ओढ़न षष्ठी। जगन्नाथ जी को भी गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं जगन्नाथपुरी में। तो उस दिन से क्या होता है कि फूलों का श्रृंगार नहीं होता है, क्योंकि फूल ठंडे होते हैं। अभी ये पहना है ना ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन ठीक है इतना नहीं है, फूल ठंडे होते हैं। तो ठंड में जहाँ पर बहुत ठंड होती है वहाँ पर ठाकुर जी को ओढ़न षष्ठी के बाद में फूलों का श्रृंगार नहीं होता है। तो जहाँ पर फूल होते हैं वहाँ पर फिर वस्त्रों का फूलों जैसा आकार बना के उसको माला बनाते हैं, नहीं तो दिन भर श्री जी माला पहनती हैं फूलों की। लेकिन ओढ़न षष्ठी के बाद एक फूल जैसे दिखने वाली अलंकार की माला होती है, वह भी आपको दिखाना पड़ेगा फिर मैं समझेंगे आप। फिर वो माला जो है जो फूल जैसे दिखती है लेकिन वस्त्रों की माला होती है, वो फूल बना बना के उसमें वस्त्रों के, तो वो दिन भर पहनती है। तो इसके साथ में वो भी माला उन्होंने राधा रानी के पहले पहनाई, और दूसरी बार आए तो और एक माला पहनाई। तो मैंने कहा कि राधा रानी की माला तो पहना दी आपने, बोले ये श्याम सुंदर जी की है, क्योंकि दोनों वैसी माला पहनते हैं। इसलिए कभी श्रृंगार आरती जाओगे आप तो आपको एक ऐसा विशिष्ट दर्शन मिलेगा, पीछे एक अलंकार, सामने एक गुलाबी फूल, उसके ऊपर एक अलंकार, ऐसे करके ऐसे माला होती है ऐसे। वो भी वसंत पंचमी को शुरू हो गया, वसंत पंचमी को फूलों का श्रृंगार आरंभ होता है, नहीं तो फिर पैरों में ही फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं। तो ब्रजवासी जब भी किसी पर प्रसन्न होते हैं ना, तो वो उनको बहुत कम वस्तु देते हैं, यानी कि राधा रानी की महाप्रसादी माला, राधा रानी का महावस्त्र और राधा रानी का महाप्रसाद, और बहुत ही ज़्यादा कोई प्रिय रहेगा तो उनको वो देते हैं बीड़ा, क्या कहते हैं उसको, तांबूल, गोविंद बीड़ा कहते हैं उसको, वो किसी खास व्यक्ति को देते हैं। और भी कोई खास होगा तो आपको अंदर बुलाएंगे श्री जी के यहाँ पर, और ऐसा हाथ करने को बोलेंगे, फिर चंदन जो लगाया है ना श्री जी को वो मिलता है आप। वैसे ही जगन्नाथ जी का भी है, जगन्नाथ जी के मंदिर जाएंगे तो आपको प्रसाद चाहिए तो पुजारी का प्रेम होगा तो आपको पहले दाल और चावल भेजेगा, तो ज़्यादा प्रेम होगा तो मीठा भी भेजेगा, और ज़्यादा प्रेम होगा तो मालपुआ भी भेजेगा। बहुत ज़्यादा प्रेम होगा ना तो एक बहुत दुर्लभ प्रसाद होता है, वो दूध को घुटा के उसको बनाते हैं खुरचन, पता है खुरचन क्या होता है, बड़ी कढ़ाई होती है ऐसे, फिर दूध रखते हैं उसको घुटते रहते हैं, फिर साइड में दूध सूखता है फिर उसको ऐसा निकालते हैं, पपड़ी इकट्ठा करते हैं इसको ऐसे करके इकट्ठा करते हैं, फिर उसका कुछ कुछ करते हैं उसके अंदर, और फिर वो फोल्ड वोल्ड करके जगन्नाथ जी को प्रसाद देते हैं, फिर वो आता है अपने पास। 56 भोग है ना उनके पास, तो 56 भोग यानी हर बार 56 भोग नहीं खाते, वो दिन में मिलकर 56 भोग खाते हैं, 56 आइटम्स इन वन डे। एनी वे जगन्नाथ जी में घुसेंगे तो एनी वे, लेकिन जगन्नाथ जी का और श्री वृंदावन का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जगन्नाथ जी वो राधा रानी की स्मृति में, उत्कट स्मृति में जगन्नाथपुरी में रहते हैं, वृंदावन की याद में, ब्रज की याद में, ब्रज के प्रेम की याद में, विरह में वो जगन्नाथपुरी में रहते हैं। वो ऐसे अद्भुत भगवान हैं कि बाहर से ऐश्वर्य संपन्न हैं और हृदय में वृंदावन राधा रानी है, ऐश्वर्य भी है माधुर्य भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऐसे कोई भगवान का अवतार नहीं होता है। नरसिंह भगवान ऐश्वर्य, वामन भगवान ऐश्वर्य, श्री कृष्ण माधुर्य, माधुर्य भी और ऐश्वर्य भी जब भी जगह चेंज करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी परमानेंटली बाहर से ऐश्वर्य अंदर से माधुर्य, बड़े विशिष्ट भगवान हैं वो। इसलिए बाहर से वो द्वारका कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं, हृदय से वो वृंदावन में रह रहे हैं, और वृंदावन से ज़्यादा बरसाने में रह रहे हैं क्योंकि बरसाने की राधा रानी उनके हृदय में है, इसलिए निश्चित रूप में बरसाना भी उनके हृदय में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वहाँ की जो लीलाएँ हैं वो बहुत अद्भुत लीलाएँ हैं, वो माधुर्य ऐश्वर्य का मिश्रण है, रामचरित प्रभु का है। साउंड पे ध्यान रखो, हो रहा है ऑलरेडी, उनको जगह दे दो थोड़ा सा जाने आने के लिए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से श्री राधा रानी का धाम, आप सबको बहुत बधाई हो, और आज आप हमारे इस नए अस्पताल में आए उसके लिए आपका धन्यवाद है। ये सब ये स्वप्न है पूरा, दिस इज अनबिलीवेबल, इस पर विश्वास रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम लोग उनको पता है कि 2005 से हमने ब्रजभूमि का हर एक कर्ण छान मारा नंदगांव बरसाने में, इन सर्च ऑफ लैंड। 2005 में शुरू किया था, 2011 में ये जगह का प्राप्ति हुई, और 2012 में प्राप्ति हुई तो 10 साल कुछ नहीं हो पाया क्योंकि धन का अभाव था। बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो जो फ्री सेवा है वही 1.25 करोड़ का उसमें आउटगोइंग था, तो फिर ये पीछे ही रह गया हमेशा। देखेंगे अगले साल करेंगे ऐसे पुष्पन होते होते फिर 30 साल हो गए पूरा सेवा शुरू करके। 92 से लेकर 20 साल के बाद ज़मीन मिली, 10 साल और वेट किया 2022 में। बोला अभी हम तो देखेंगे नहीं, पर हम जीवन ही रहने का देखेंगे कैसे, तो संकल्प लिया और शुरू किया। फिर राधा रानी की कृपा हुई धीरे धीरे धीरे। अभी भी थोड़ा सा अभाव है इसके अंदर, 4 करोड़ का अभाव है अभी भी, और फिर भी आपके सामने बहुत अच्छी तरह से 80% बिल्डिंग रेडी है आपके पास। तो हमारी ये इच्छा थी कि भक्तों के चरणों की रज जो है वो इसमें मिलनी चाहिए। तो आप लोग बहुत प्रामाणिक भक्त हो, आपके चरण यहाँ पर लगे तो हमारे वास्तु का जल्दी जल्दी प्रगति होगी। हाँ, कृपया करके सब लोग अपना घंटी बंद कर दो, प्लीज़ एवरीबडी, चालू है तो बंद कर दो उसको। सो भक्तों की चरणों की रज जो है वो तो भगवान भी चाहते हैं। क्या कहते हैं, भक्त चरण धूली, भक्त चरण जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, चेतन चरितामृत। तीन वस्तु इस पूरे निर्माण में बहुत भयंकर शक्तिशाली है, परिणाम में इन इफेक्ट। एक है भक्त चरण धूली, भक्तों के चरणों को स्पर्श की हुई धूली। दूसरा है भक्त चरण जल, जो भक्तों के चरणों को धोकर निकला हो। और भक्त भुक्त, भक्त ने खाया हुआ अवशेष, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। और आगे के श्लोक में लिखा है कि किसी भी कीमत पर इन तीन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति में बहुत ही गंभीर है उसे किसी भी कीमत पर इन तीन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहिए। इन तीन वस्तुओं में जो शक्ति है वो और किसी चीज़ में नहीं हो सकती है। ये पूरी आत्मा की चेतना को ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उसका। आत्मा का परिवर्तन बहुत चीज़ों से होता है, भगवान नाम से होता है, कथा से होता है। हाई स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको, सबको चाहिए ना आजकल, हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट, हाई स्पीड सबको चाहिए, सुपर हाई स्पीड। वैसे सुपर हाई स्पीड में अगर स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति करनी है आध्यात्मिक जीवन में तो ये तीन वस्तुओं का संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। देखो आप थोड़ी कल्पना कर लीजिए, कल्पना करने में क्या होता है, कोई नुकसान तो नहीं ना। ये कुछ समय के लिए मान लो कि आपको पूरे वैकुंठ का स्वामी आप हो, मानने में क्या आता है, मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रभुपाद जी भी ऐसे बैठे थे उधर टॉमकिन स्क्वायर पार्क में, ऐसे अकेले इंडियन ओल्ड मैन बेंच पर बैठे थे। मैं गया हूँ उधर तो बेंच में और एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा था, वो देख रहे हैं मैं भी बुढ़ा, ये भी बुढ़े बैठे हुए हैं आराम से। और प्रभुपाद जी उनको बताने लगे कि हजारों मंदिर, सैकड़ों मंदिर हैं, हजारों भक्त हैं और लाखों किताबें बट रही हैं स्पिरिचुअल बुक्स, लेकिन समय हमको उस सच्चाई से दूर रख रहा है। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस फ्रॉम द ट्रूथ। तो वो बुढ़ा जो बैठा था बोला ये बुढ़ा तो सठिया गया है, यानी खाली स्वप्न देख रहा है। लेकिन प्रभुपाद सपने नहीं देख रहे थे, प्रभुपाद जी को सब दिखाई पड़ रहा था क्या होने वाला है और क्या होगा। और वो जो उन्होंने ऐसे टॉमकिन स्क्वायर पार्क में बैठकर जेब में एक भी रुपया न लेते हुए बोला था ना, वो सब बाद में सच हो गया। भगवान भक्ति, भक्त की इच्छा जो है ना वो बहुत सीरियसली पूरी करते हैं। वैसे वो तो भारतीय विद्या भवन में ऐसे खड़े हो गए लेक्चर देने के बाद में, जीने में वो अच्छा जीना है, ऐसा गोल जीना है, ऐसा ऊंचा है, उतर रहे थे, ऐसा गली को डंडी दिखाया, बोला एक मंदिर होना चाहिए। विच ईयर 1977, और 1986 में हमने वहाँ पर प्रवेश किया। मैं वहाँ पर सबसे पहला फुल टाइम गृहस्थ था. आई जॉइंट विद फुल टाइम विद माई न्यूली वेडेड वाइफ. और वो अनेक अनेक सुंदर सुंदर चूहों और चूहियाँ के बीच में और हज़ारों कॉकरोचों के बीच में हमने बहुत सुंदर हमारा प्राथमिक वैवाहिक जीवन बिताया. हमारी बीवी बहुत डरती थी उस समय. बड़े बड़े ऐसे क्या चुहोत्तम वैसा हमारे ऊपर आते थे. रात को जगाते थे धड़ 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 धड़. और जब जगते थे ना, जग के उसके आवाज़ उसके स्वर से तो देखते थे तो दीवार में पूरा ऐसा पूरा ऐसे ब्राउन कैसे होगा दीवार. ब्राउन नहीं है, पूरा कॉकरोच है पूरे सगड़े फुल कट टू कट ऐसा एकदम सत्संग में पूरा. तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्तों के इच्छा को भगवान पूरी करते. यहाँ से ये बात शुरू हुई थी. तो फिर वो बात शुरू हुई कहाँ से हुई थी. प्रभुपाद जी बेंच पर बैठे हैं तो वो जो देख रहे थे वैसे ही आप सोच सकते हो कि सारे वैकुंठ का साम्राज्य आपके पास है. एक नहीं, जितने वैकुंठ है. आपको पता है कितने वैकुंठ है कि एक ही वैकुंठ है? अनंत कोटि वैकुंठ है. सारे ब्रह्म ज्योति में फ्लोट कर रहे हैं. थोड़ा बताना जरूरी है आपको. और जितने वैकुंठ है ना उतने विष्णु हैं. और हर विष्णु सेम नहीं है. इधर भी वही उधर भी वही एक्सपांशन ऐसा नहीं है. कुछ हाथ चार हाथ में चंक चक्र पद्म गदा विराजमान है. समझो अभी एक सामने वाले लेफ्ट में हम जो चक्र दे दिया और कांस्टेंट रखा और ये तीनों को घुमाया इधर से घुमाया तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं. फिर इधर को चक्र बनाओ फिर बनाओ कॉम्बिनेशन ऐसे करके चार हाथ में चक्र दो बना दो फिर कमल का शुरू करो फिर गदा का शुरू करो और फिर और किसका शंख का करो. ऐसे करने से अनंत विष्णु निर्माण हो जाएंगे. कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन उतने सारे विष्णु वह हर एक वैकुंठ का नियंत्रण करते हैं लालन पालन करते हैं. और उसमें लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव कोटि कोटि लक्ष्मियां विष्णु की सेवा करते रहती हैं. ये सब मैं बताने का अर्थ है. मैं आपको समझ में आएगा बाद में सब क्यों बता रहा हूँ. और वो लक्ष्मी जी के शरीर पर इतना इतना इतने अलंकार इतना ऐश्वर्य है कि हम यकीन नहीं कर सकते. जैसे उनके पैर के नखों से लेकर अलंकार शुरू होते हैं. हाथ के नखों में भी अलंकार है. पूरा शीश पूरा कंठ जो है मेन वो भी अलंकारों से भरा हुआ है. और देखो अलंकार का क्या ऐश्वर्य है. एक बार ऐसे झूठ मूठ की प्रेम की लड़ाई में हमारी मराठी में कहते हैं लुटू पुटू की लड़ाई मतलब ऐसे ही प्रेम प्रेम में ऐसे प्रेम के कलह में झगड़ा हुआ और वो ऐसे जो भी कुछ हिलाया था एक कंकण टूट गया. होता है ना कभी कभी टूट गया कंकण. तो लक्ष्मी जी ने गुस्से से उसको लिया और फेंक दिया से उसको टूट गया ना झगड़े में. तो टूटने से और भी माताओं को क्रोध आता है. अरे तुम्हारा झगड़ा मैं हुआ तो देखो हमारा कंगन भी टूट गया. तो उसने उठा के फेंक दिया उसको. कहते हैं पूरे मटेरियल वर्ल्ड एक ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो इकोनॉमिक्स है वो टूटे हुए कंगन पर चल रहे हैं. थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए उसको. उसका मतलब क्या होता है. भारत का इकोनॉमी भी $5 trillion पर जाने वाला है. वो भी 5 नंबर पर है और बाकी जो है वो उसके ऊपर है. और वो सब मिलकर जो है वो एक पृथ्वी का इकोनॉमिक्स है. ऐसे 14 लोग हैं इधर एक ब्रह्मांड में और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है देखो आप. और वो सारा वो टूटे हुए कंगन पे चल रहे हैं. और बाय द वे वो लक्ष्मी जी के पास और बहुत सारे अलंकार भी है. वो टूटे हुए नहीं है पहने हुए हैं. और ऐसी लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम शत कोटि लक्ष्मियाँ जो है वो एक एक ब्रह्मांड एक एक वैकुंठ में विष्णु की सेवा करती रहती है. कुछ कल्पना कर सकते हैं कितना ऐश्वर्य होगा. तभी आप सोच लो कि आप इस सब के मालिक हो. सारा ऐश्वर्य आपका है. लेकिन ये सारा ऐश्वर्य लेकर आप यहां आओगे तो बरसाना वृंदावन धाम की एक रज का कण खरीद नहीं सकते. ये बताने के लिए पूरा वर्णन किया आपको मैंने। यहाँ का एक कर्ण जो है ना वो नहीं कर सकते। एक बार ठाकुर हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज दावानल कुंड नाम की सुंदर जगह है जहाँ पर भगवान ने अग्नि को पिया था, अच्छी कहानी है। तो उन्होंने अग्नि प्राशन किया था तो वो कथा बता रहे थे हमारे महाराज जी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज दावानल कुंड नाम की जगह के किनारे बैठ के कुछ भक्तों को लेकर ऐसे रज में बैठे थे, कुछ चादर वर फैला नहीं था, ऐसे बैठे थे। तो कथा वथा सुनाई, कथा सुनने के बाद में वो उठे और बाकी लोग भी उठे। अब मुझे बताओ जब मिट्टी में बैठ कर हम उठते तो क्या करते हैं, झाड़ते हैं ना सब लोग। जैसे ही उन्होंने झाड़ा महाराज ने झाड़ना शुरू कर दिया, बहुत डांटा उनको, क्या कर रहे हो समझते हो आप। तो सारे देवता जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के ये मिट्टी के एक कण के लिए लाल आए थे और तुम्हारे सर पे करोड़ों कण बैठे हुए हैं और तुम झटक रहे हो उसको, मैं जानते नहीं तुम लोग इसकी वैल्यू क्या है। बोले जो राधा कृष्ण के प्रेम का गुह्यतम रहस्य है वो सभी रजकण में समाया हुआ है। ये एक कण जो आपको दे सकता है वैकुंठ की संपत्ति भी आपको दे नहीं सकती। इतना सारा दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य ऐश्वर्य में बाकी ऐश्वर्य में फर्क है, ये दिव्य ऐश्वर्य है, ये आत्मा का ऐश्वर्य है, आत्मशक्ति का ऐश्वर्य है। और इसका प्रेम संपृक्त यानी सैचुरेटेड विथ लव ऐसी स्थिति है। और एक कण का भी अगर स्पर्श प्राप्त होता है और उसकी महिमा आप जानते हो, उसको ग्रहण करते हो, ये तो मट्टी तो बहुत इधर उधर उड़ती रहती है और हमको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो कब से जा रहे हैं वृंदावन में, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि परिवर्तन होने के लिए भी उसके लिए अनुकूल जो चेतना है वो होनी चाहिए। नथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली। आप चावल खाएंगे ऐसे ही कच्चा निकाल के दाना खाएंगे ग्रेन्स तो आप पचा नहीं पाएंगे उसको, लेकिन अगर आप उस चावल को पकाएंगे और खाएंगे और साथ में आपको भूख भी लगी होगी तो वो आपको शक्ति देगा। बैठिए बैठिए, इनको बिठाइए प्लीज, बाद में। यही है हमारे दुपट्टे का उगम, गोपाल सखी। सो क्या कह रहा था बताओ। हाँ, तो केवल वो चावल पका के खाने से उसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती है, आपकी भूख भी होनी चाहिए। आपको भूख होगी और वो पका हुआ अन्न मिलेगा तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। उसी प्रकार से केवल धूल शरीर पे गिरने से परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होगा लेकिन वो वेट करेगा तब जब आपकी स्मृति अनुकूल होगी। इसलिए ऐसा कहा है कि ब्रज भूमि के गधा भी बहुत भाग्यवान हैं, उधर मिट्टी में लोटपोट रहते हैं और ईंट ढोते हैं जिससे मंदिर का निर्माण होता है, इसलिए गधा भी बहुत भाग्यवान है। यहाँ का भंगी बहुत भाग्यवान है, दिन रात रज में स्नान करते रहते हैं। हमारे श्यामानंद गोस्वामी थे ना, श्यामानंद गोस्वामी, वो ऐसे ही ब्रज में जाकर रोज बुहारी करते थे। ऐसे धूल के रज में ऐसे होता ना बादल ऐसा, उसमें ही रहा करते थे सदैव, क्योंकि जब आप करते ना तो ऊपर आते धूल तो उसी में रहते थे। लेकिन उनकी चेतना इतनी उच्च थी कि अचानक उस वो धूल के बादल में या कुछ भी कहो उसको आप, करते 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 उनको एक सुंदर पायल मिली। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, ये तो पायल साधारण पायल नहीं है, बहुत दिव्य पायल है, इतना प्रकाश है उसके अंदर। लेके देखे रहते तो एक बहुत सुंदर कन्या आई, बोले हमारी स्वामिनी का पायल जो है ना वो खोया है कहीं, तो आपको मिला है क्या। उन्होंने कहा मुझे पास है, दे दो, मैं लेने आई हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जिनका है उनको बुलाओ, उनको ही देंगे हम। तो ये भी होशियार, वो भी होशियार, तो वो फिर स्वामिनी को लेके आई और दूर से दर्शन कराया, तो ये जाके उनके चरणों में गिरे। और क्या कहें आपको, तब तो पुरुष शरीर में थे, फिर दंडवत किया तो अपने मूल कनक मंजरी के स्वरूप में आ गए, बस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कनक मंजरी। शुरुआत कहाँ से हुई सबकी, रज के संपर्क से हुई। फिर उन्होंने कनक मंजरी ने ये पायल राधा रानी को दिए, स्वामिनी जी को दिए, और उन्होंने राधा रानी उसको हाथ में लिया और उसके कपाल पे उसको दबाया, ऐसे से दबा दिया तो उसका एक प्रिंट आया, जो भी है छाप आया उसका, और वो उनका तिलक बना। राधा ने कहा कि ये आपके लिए मेरा तिलक है, मैंने दिया हुआ, किसी को बताना नहीं। फिर हृदय से एक श्याम सुंदर जी की मूर्ति प्रकट की, प्रत्यक्ष हृदय से अपने, और उनको भेंट दी कि आपकी श्याम सुंदर जी, इसकी पूजा करो। और क्या दिया तीसरी वस्तु? हाँ, अरे आइको वाला पजे ना, नहीं नहीं वो स्टैम्प लगाया, हाँ, और मंत्र दिया, दूसरा एक मंत्र दिया, तो गुरु जी से अलग था, बोले किसी को बताना नहीं। और तभी वो सखी वेश में थे तो उनको पूरा श्रृंगार किया ललिता विशाखा सब सखियों ने मिलकर, और उसके बाद में उन्होंने सबने मिलकर ये कनक मंजरी सखी जो अभी सुशोभित की गई है, अलंकृत की गई है, उनके साथ में होली खेला। बहुत देर तक होली का उत्सव मनाया गया, तो पूरा श्रृंगार, उसके बाद होली के अनेक रंग पूरे भर गए थे श्यामानंद जी उस समय, मतलब कनक मंजरी के रूप में, और कुछ ही क्षणों में वो सारा सीन जो है वो अंतर्धान हो गया, यानी बंद हो गया सीन, और ये ऐसे ही बैठे हैं कनक मंजरी के रूप में, भाव विभोर होकर ऐसे बेहोश जैसे बैठे हैं। बहुत देर के बाद में इनका शरीर फिर रूपांतरित हो गया, फिर वे श्यामानंद बन गए, फिर चले गए घर पे, लेकिन मूर्ति तो उनके साथ में थी, ये छाप भी था, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसकी वजह से। लोगों को लगने लगा कि अभी ये भ्रष्ट हो गया अपने मार्ग से, गुरुजी ने दिया हुआ मंत्र नहीं बोलता है, कुछ और बोलता है, और तिलक भी अलग धारण करता है, और कहता है ये नई मूर्ति की भी पूजा कर रहे हैं। यानी बहुत लंबी कहानी है। फिर गुरुजी भाग भाग के आए बंगाल से, बहुत क्रोधित होकर कि तुमने मुझसे दीक्षा लिया और कुछ अलग मंत्र जप कर रहे हो। राधा रानी का आदेश था ना, किसी को बताना नहीं है, तो देखो ना लोक निंदा हो रही है और सत्य बता भी नहीं पा रहे हैं। बहुत कष्ट हुआ उनको, इतना कष्ट हुआ कि गुरुजी भाग के आए, और गुरुजी इतना क्रोधित थे वो आते ही उनको पीटने लगे, बहुत पीटा उनको, हाथ पांव सबसे पीटा जोरदार। तभी भी राधा रानी के आगे चुपचाप बैठे हुए, बीच में इतना पीटा कि बाकी सारे भक्तों को दया आ गई, अरे कितना पीटे, मर जाएगा बेचारा, इतना पीट रहे हो आप। फिर रोका उनको पकड़ के चार चार भक्तों ने, फिर उनको जाके रूम में बिठाया, फिर वो भी थक गए बेचारे, मार मार के सो गए। जो भी सोए तो राधा रानी स्वप्न में आई, और राधा रानी स्वप्न में आकर बहुत डांटा उनको कि ये सब मैंने उनको दिया है, ये मंत्र, ये तिलक का छाप और विग्रह मैंने स्वयं दिया है, और मैंने उनको कहा था कि किसी को बताना नहीं, आज मैं आपको बता रही हूँ। तो बीच रात में समझो अपने हिसाब से 1 बजे 2 बजे वो उठ गए, एकदम झटका लगा रहा उनको, अरे बाप रे, पश्चाताप भी हुआ। बीच रात में दरवाज़ा खटखटा के अपने शिष्य के रूम पे गए, जो दर्द में ऐसा क्या कहते हैं उसको करा रहा था, उसके चरणों में आकर दंडवत किया गुरुजी ने, बोले क्षमा चाहते हैं, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे शिष्य नहीं, आप गुरु हो मेरे, मैं राधा रानी के दर्शन की तड़प रहा हूँ, और राधा रानी तुम्हें आके दर्शन देकर गिफ्ट भी दे रही है, और मैं तो अभी नाम ही ले रहा हूँ उनका, कुछ नहीं हुआ है, कुछ लीला है। दोनों ही सिद्ध भक्त है भगवान के। कहना कहने का तात्पर्य क्या है, रज तो सब जगह होती है, भक्तों के भी होती है, भगवान के भी होती है, सब जगह होती है। उसका परिणाम तब दिखाई लगने लगता है जब हम उसके लिए योग्य हो जाते हैं, इट स्टार्ट शोइंग इट्स इफेक्ट। पानी का वो बोलता है, जब उसको अग्नि मिलती है तो फिर बाष्प बन के चला जाता है, बाष्प बनकर, या तो पानी पानी रहता है, बर्फ है ठंडा होता है, अग्नि प्रक्रिया करेंगे तो फिर वो गर्म हो जाता है। तो ये आपके भक्तों के चरणों की रज यहाँ पर आनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर प्रवचन रखा, नहीं तो अलग से लेके आना जाना बहुत थोड़ा होता है, तो ये प्रवचन ही कर देंगे तो 2 in 1 काम हो जाएगा। वैसे हमारे परम पूज्य रमेश बाबा महाराज भी इस भूमि पर आए, भूमि पूजन के समय पर आए, परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज भी इस भूमि पर आए, विनोद बाबा जी महाराज जो इसमें यज्ञ में आए थे अभी वो भी आए, और जब भूमि पूजन हुआ था तो 300 संत आए थे उसके अंदर। भूमि पूजन के समारोह में किसी भी व्यक्ति को दूसरे को इनवाइट नहीं किया था, केवल संतों को ही इनवाइट किया गया था। 300 लोगों की सभा हुई यहाँ पर, सब संत ही संत, बाकी हम लोग आयोजक थे बस खाली। और सब संतों ने आशीर्वाद दिया, सब संतों को प्रसाद दिया, सब संतों को भेंट दी हमने, सबको पटका पहनाया, सबका सत्कार किया, सबने दिल भर के आशीर्वाद दिया। और जब वो भूमि पूजन का समारोह हुआ तो उसमें डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी भी आए थे। उन्होंने ये रोड बनवाया सीमेंट का, अगर वो रोड नहीं तो नहीं होता ना, तो आप कल सुबह पहुंचते। ऐसा रास्ता पूरा, एक स्काई साइकिल भी चले गई ना तो पूरा धुएं का बादल आएगा, धूल का बादल आपके ऊपर। अच्छा है लेकिन चलना मुश्किल है उसके ऊपर। तो जब वो ऐसा ही था तो बोले कब बनेगा रास्ता, तो उन्होंने अपने सांसद निधि से 1,65,00,000 रुपये सैंक्शन किया और गवर्नमेंट की मशीनरी के थ्रू अपने आप ही सीमेंट कॉन्क्रीट, अपना तो डंबर का रास्ता बनाने का विचार था लेकिन उन्होंने सीमेंट कॉन्क्रीट का दुतरफा रास्ता बना दिया, टू वे। और अभी और धन सैंक्शन किया उन्होंने उस पर फुटपाथ और लाइट लगाने के लिए, जल्दी जल्दी उसका सैंक्शन हो गया, अभी जब भी हॉस्पिटल के साथ साथ चालू हो जाएगा वो। जैसे ही उन्होंने वो रोड पूरा किया तुरंत उसका भूमि पूजन हुआ और वो भी आए थे भूमि पूजन में, और उनकी और संतों की बहुत अच्छी संवाद हुआ इसमें, अनोखा संवाद। और तब ब्रजवासी जितने भी संत आए थे यहाँ पर 300 के ऊपर, वो सब सुब्रमण्यम स्वामी आने से इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए क्या कहें आपको। वृंदावन से भी गोस्वामी लोग आए थे, पद्मनाभ गोस्वामी जी, राधा वल्लभ गोस्वामी जी, क्या कहें आपको, इतने लोग आए थे उसके अंदर और सबने खूब आशीर्वाद दिया। और जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ तो रमेश बाबा जी व्हील चेयर में थे ना, तो उनको लास्ट में उतारा गया, तो मैं उनको मिलने गया तो अचानक उन्होंने देखा, ऐसे कहा, विश्वरूप हम कह रहे हैं आपको बहुत जल्द अस्पताल बनेगा, मैं कह रहा हूं आपको बहुत जल्द अस्पताल बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। वाह क्या बात है, संत जब कुछ कहते हैं तो भगवान को उसको पूरा करना पड़ता है। फिर हमारी सर्कस शुरू हुई और बहुत बहुत यश मिला उसमें, लेकिन अचानक उसको ब्रेक लग गया, एकदम ऐसा लल बोलते हैं, लल यानी शांति आ गई बीच में। तो मीटिंग हुई महाराज के साथ, परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ ये क्यों हो रहा है, पहले जैसे गति से धन क्यों नहीं आ रहा है। तो हम लोग को बोले कुछ क्या रहस्य है इसके पीछे। उन्होंने कहा कि राधा रानी आप सबके हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, शी वॉन्ट्स टू प्योरीफाई योर हार्ट, इसलिए आप थे ना उस मीटिंग में 8th floor के ऑडिटोरियम में। तो हमने कहा ठीक है, सेकेंड आदेश दिया मुझे कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, डोंट टेक एनी एंग्जाइटी, इट्स माई ऑर्डर टू यू। तब से हमने चिंता ही करना छोड़ दी जो राधा रानी देखेगी, और वास्तव में देख रहा हूँ मैं, हमने चिंता छोड़ दिया और फिर काम शुरू हो गया। तभी भी ये हमारे इस्कॉन का एक इतिहास है, लोगों को लगता है, देखो कैसा है, सबको लगता है कि इस्कॉन के पास बहुत पैसा है, क्योंकि मंदिर ऐसे बनाते हैं ना पूरे गॉर्जियस मंदिर, एकदम 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, अभी भी उधर खारघर में मंदिर आ रहे हैं 200 करोड़ ना, विशाल मंदिर बनाते हैं, लेकिन जेब में ठन ठन पाल रहते सब लोग। हाँ शुरू करते हुए कोई पैसा रहता नहीं है, बीच में भी रहता नहीं है, एंड में भी रहता नहीं है, चलाने को शुरू करने के बाद रहता नहीं है, क्योंकि राधा रानी चाहती है कि ऐसा इजीली देना नहीं है धन किसी को, फिर वो आदमी बहक सकता है, उसकी सेवा प्रवृत्ति भ्रष्ट हो सकती है, उसको गर्व हो सकता है कि हमारे अकाउंट में इस्कॉन की 500 करोड़ डिपॉजिट में रखे हैं। ऐसा रहेगा तो आप लोगों को क्या एंग्जाइटी है, क्या आपको तड़प रहेगी, क्या कोशिश करेंगे आप, क्या तपस्या करेंगे, क्या हमारे मंदिर में वो मंदिर बनना चाहिए राधा गिरधारी का मीरा रोड के अंदर, तो हमारे जो भक्ति हृदय वनमाली महाराज है, तभी वनमाली प्रभु थे वो, तो उन्होंने निर्णय लिया तब का कि मैं ये मंदिर का निर्माण का जब भी होगा उद्घाटन कार्यक्रम होगा ना, तब तक मैं उपवास ही करूंगा एकादशी का। 3 साल उन्होंने एकादशी का उपवास किया, यानी फलाहार किया, केवल ओनली फलाहार, समझो 500 करोड़ बैंक में जमा होते तो करते क्या वो उपवास? नहीं ना, उन्होंने नहीं, कितने लोगों ने संकल्प किया था ऐसे, बहुत सारे संकल्प किए। तो जब राधा रानी या कृष्ण भगवान जब तड़पा दे ना किसी को, तो उसमें से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं भक्तों के लिए, उनके कल्याण के लिए। मैंने देखा ये 3 दिन का समारोह हुआ ना, तो पहले दिन भी नहीं खाया उन्होंने। 3 दिन का समारोह जब पूरा हुआ, ठाकुर जी की प्रतिष्ठापना हुई, ठाकुर जी का महाअभिषेक हुआ, फिर श्रृंगार हुआ, फिर भोग लगा उनको, फिर सब लोगों ने प्रसाद लिया, तो शाम में भक्ति हृदय वनवारी महाराज तब सन्यासी बन चुके थे, उन्होंने अन्न ग्रहण किया। और ये मंदिर निर्माण के समय भी याद है कि एक गरीब ठेला चलाने वाला भक्त है। बहुत सारे हमारे इस्कॉन में देखो, सबसे बड़ी खूबी यह है कि रोड पे टोकरी रख के लड्डू बेचने वाला, टोकरी बेचने वाला भी भक्त है, और मफतलाल और बहुत धनी लोग भी है, और अम्बरीश प्रभु क्या नाम उनका, नहीं अनिल अग्रवाल और कौन है, हेनरी क्या फोर्ड का नाम क्या है, नहीं नहीं अपने फोर्ड का नाम क्या है, अल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक है वो, सारे लोग हैं। और वो तो इंटरनेशनल बात हो गई, इंडिया में भी है ऊपर से नीचे तक, अजय पिरामल भी है, और गरीब से गरीब लोग वो हमारी मीरा रोड के रोड पे अस्पताल के बाहर खड़े होकर सब्जी बेचने वाले ठेले पे, वो भी नवनीत चोर बाबू भी हैं, सब लोग हैं। और सब लोग इसमें सबको हाथ पकड़कर मंदिर में नृत्य करते हैं बिना किसी भेदभाव के, बाजू बाजू में बैठकर प्रसाद पाते हैं, ये सच्चाई है, ये 40 साल से हम देख रहे हैं, कोई किसी को संकोच नहीं है। और एक अद्भुत घटना है वो कि जो मफतलाल इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनका ड्राइवर है मफतलाल भी दीक्षित है कृष्णचंद्र दास, और ड्राइवर भी जयनीताय दास, और दोनों मिलकर डांस करते हैं हाथ पकड़ के, और जिंदगी भर ड्राइवर की सेवा की उनकी, नहीं ऑफिशियल नौकरी है, लेकिन मंदिर में साथ में डांस करते हैं बिल्कुल बिना संकोच। श्री कृष्ण को संकोच नहीं है कि मैं राधा रानी के चरणों में अपने आप को गिड़गिड़ाता हूँ, बताने में संकोच नहीं है, वैसे उनको भी संकोच नहीं है, ड्राइवर के साथ नाचते हैं। और दूसरी बात, ये हमारी विशेषता है, मुझे गर्व है इस बात पर कि हम किस किस के साथ बैठ के प्रसाद लेते हैं, क्योंकि पता भी नहीं चलता है। पहले बहुत सारे दिन थे जब लोग हर संडे मंदिर जाते थे और मफतलाल जी के बाजू में बैठकर प्रसाद पाते थे, लेकिन हमको कई महीने तक पता नहीं था कि ये मफतलाल जी हैं, क्योंकि इतना लहंगा सदरा और स्लीपर पहन के आते थे, वो आज भी स्लीपर ही पहनते मंदिर में, वो देखते हैं वो ब्लू स्लीपर आए मतलब प्रभु जी आ गए। ये है हमारी संस्था, उसके पीछे ऐसे ऐसे भक्तों ने अपना तप किया, याद नहीं, यकीन नहीं कर सकते। तो तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि सबको लगता है कि इस्कॉन के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो कैसे उसको इकट्ठा करते हैं वो भक्तों को ही पता है, कितना तड़पते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितने अपने अहंकार को क्या कहते हैं उसको, जिजवतात, मुझे क्या है ग्रेटिंग होता, ग्रेटिंग बोलो मैम, ग्रेट वो करेला कैसे, करेल नहीं कैरेट कैसे ग्रेट करते हैं, कैसा होता है पहले वो, और उसको करने के बाद में क्या होता है उसका, नीचे कैसा होता है, ऊपर कैसा होता है, ऐसा कड़क, और वो करने के बाद नीचे क्या होता है कचूमर वैसा भक्तों के गाजर को पूरा भगवान कचूमर बना देते हैं, अहंकार के गाजर को, वो नहीं चाहते कि रेडीमेड को उसको बिल्डिंग दे दें, वो कचूमर बना के ही बिल्डिंग देते हैं क्योंकि वो भक्तों को गर्वित नहीं करना चाहते, वो भक्तों को सिंपल नम्र बनाना चाहते हैं, कष्ट भोगते हैं लेकिन भक्तों को अपना बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए वो सब करते हैं। उनको अंतिम स्थिति में क्या करना है, भगवान को अपने भक्तों को उनको मिलने के लिए योग्य बनाना है, इसलिए वो सब कुछ मेहनत करते रहते हैं, इसलिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कितने लोग मुझे बताते हैं, मैं जाके बताते प्रभु जी कुछ मदद करो, और यहाँ के भक्त लोग बताते हैं अरे प्रभु जी चिंता मत करो, आप नहीं कर रहे हो, राधा रानी सब करती है, वो ही करेगी, अपनी मेहनत करते रहो, आप प्रयास करते रहो, कब किसके पास से देना है आपको, राधा रानी तय करती है, उनका प्रोजेक्ट है वो, आपका प्रोजेक्ट नहीं है, आप सेवक बने रहो। हम भी इस बात को मानते हैं निश्चित रूप से। इधर एक गड्ढा मिलेगा आपको, अभी अंधेरा में दिखाई पता नहीं, तो वहाँ पर भूमि पूजन करके जमीन के अंदर 4 फुट वो 5 कलश रखे हैं, सोने का अनंत शेष रखा है, और अनंत शेष ऐसा है और एक नागिन भी है और बहुत सारी पवित्र चीज़ें हैं। और उसमें जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स उसका पूजन करके उसको रखा हुआ है। तो कई संतों ने पिछले दिन, एक दिन पहले, वो ब्रिक्स लेके अपने घर पे गए। संत लोगों ने अपनी कुटिया पे उसका अनुष्ठान किया कि 11,000 जप करेंगे, जो भी कुछ उनका अपना जो भी है वो अनुष्ठान किया, उसको दिव्य वस्त्र पर के उसका कुमकुम हल्दी सब पंचोपचार से पूजन किया। और वो पूजन किए हुए ईंट है ना, वो उसे बहुत सम्मान के साथ थाली में लाकर यहाँ पर लाके दिए और वो अपने हाथों से उन्होंने विराजमान किए। और थोड़ा सा दूर है वो, तो ये बिल्डिंग जब अभी बन गई, नींव बन गई, उधर बन गया, तो जमीन के अंदर से एक ब्रिज बना के उसको जोड़ दिया है, भूमि पूजन के स्थान को इसको जोड़ दिया। अभी पूरा पक्का ब्रिज हो गया उसके अंदर, अंडरग्राउंड। जैसे जमीन लिया हमने तो देखा कुछ लोग आए थे उधर वो करने के लिए, क्या नाम, वास्तु रेखी, वास्तु विचारद आए थे। उनके पास कुछ यंत्र होता है, ऐसे पकड़ते हैं तो वो ऐसे रहता है और यहाँ से ऐसे रहता है। जैसे आपने पकड़ा है ना, दो ऐसे डंडी आपके सामने होती है और ऐसे पकड़ते वो, और जाके टेस्ट करते रहते हर जगह पर। तो जब वो ऐसा हो गया ना, पूरा ऐसा हो गया, तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक वाइब्रेशन है उसके अंदर, पॉजिटिव वाइब्रेशन, डिवाइन वाइब्रेशंस। और वो ऐसा ही रहेगा तो नेगेटिविटी है, मतलब कि खून खराबा हो गया होगा, किसी का मर्डर हो गया, कुछ क्या हो गया, सब वो जो भी गलत कार्यों का परिणाम होता है तो वो भूमि उसका परिणाम दिखाती है। क्या कहें आपको, टोटल 2 लाख प्लस स्क्वायर फीट हमारा एरिया है 5 एकड़ का। किसी भी कण में गया ना वो आदमी धड़ 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 उस ऐसा ही है, वो ऐसा कोशिश कर रहा है कि ऐसा आता ही नहीं, ऐसा ही है पूरा जमा जगत। मैं था उसके साथ में, आई वॉज विथ हिम। तो किसी भी जगह पर कोने में वो गए प्रभु जी हमारे, हमारे वास्तु विशारद, यही स्थिति है। और सबसे ज़्यादा जो स्थिति ऐसी हुई वो पेड़ के पास में हुई, बहुत देर तक पेड़ को देखते रहे ऐसे वो, क्योंकि देखो वो अपना जाते हैं बम्बई में, कहीं झोपड़पट्टी में, जमीन में, कभी हड़प लिया जमीन है किसी का, गड़बड़ किया हुआ जो भी कुछ है, सब वास्तु करके आते हैं, छोड़े उनको ऐसे दिव्य अनुभव आने वाले हैं, बहुत रेगुलरली उसको आते हैं। एक आध कोने में कहीं हिल गया थोड़ा सा राइट साइड में तो भी धन्यवाद तक देते हैं वो। तो वो भी स्वयं भी दंग रह गए थे, भाव विभोर हो गए थे। मुझे कहा इस जिन जगह पर इतना बढ़िया वाइब्रेशन है कि मैंने आज तक कहीं ऐसा अनुभव नहीं किया है। और संतों ने मुझे बताया कि ये जो पेड़ है वो कम से कम 700-800 साल पुराना है, और पीपल का पेड़ है। हाँ, वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, भगवान ने गीता में बताया कि सब वृक्ष में अश्वत्थ मैं हूँ, पीपल का पेड़ मैं हूँ, तो साक्षात कृष्ण है। तो उस पेड़ पर संतों ने बताया कि कई हजारों महात्मा सूक्ष्म रूप में भजन कर रहे हैं, इसलिए इसका नियमित रूप से पूजन करना। तो हमने उसी समय से शुक्रवार को पूजन करना शुरू किया, दोपहर को 3:30-4 बजे हमारे स्टाफ आते हैं और उसका पूजन करते हैं, और सब लोग हम लोग मिलकर कीर्तन गाते हैं। मैं बम्बई से, ये लोग यहाँ से, मैं वहाँ से गाता हूँ, थोड़ा लैग के बाद में मुझे रिस्पांस मिलता है, फिर मैं गाता हूँ, फिर वो गाते हैं। ऐसा हमारा रोज का नियम है, हर हफ्ते में एक बार, बहुत आनंद आता है उसके। इसमें क्या होता है ना, कनेक्टिविटी होती है, आई फील कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड। और दर्शन भी होता है, बिल्डिंग कहाँ तक आ गई, श्री जी का दर्शन होता है, एज इफ आई एम देयर। हाँ, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये वही है डंडा वाले मदन मोहन जी महाराज, ये उनकी आवाज़ है जो हमारे, क्या कहते हैं उसको, कौन सा कॉलर ट्यून कहते हैं ना उसको, कॉलर ट्यून है ना ये, व्हाट इज इट कॉल्ड, कॉलर ट्यून, रिंग टोन, वो उनका कीर्तन है। सो तो उसका पूजन शुरू किया। अभी देख कुछ माताएं वहाँ बैठी थी, इतना सुंदर उधर वहाँ फीलिंग आता है, निकलने का दिल नहीं करता है। तो सबसे पहले हमने, आपको पता नहीं होगा शायद, तो जब पेड़ कभी भी ऐसा आता है ना, तो जैसे ऐसे फैलता है ना, वो जितना ऐसे फैलता है जड़ें भी उसकी ऐसी फैलती हैं, तो जहाँ तक उसकी शाखाएँ पहुँच रही है वहाँ तक उसकी जड़ें भी पहुँचती हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, कभी आपको कुछ बनाना होगा बिल्डिंग तो ध्यान रखना, ये विस्तार जो है उसके आगे आपको बनाना है, क्योंकि उसको वहाँ तक उसकी जड़ें पहुँचती हैं। और आप वहाँ पर बिल्डिंग बनाना शुरू करोगे तो उसके जड़ जो है वो जख्मी हो जाएंगे और पेड़ धीरे धीरे हरी बोल बोलेगा। तो सबसे पहले कुछ प्लान बनाने के पहले, इसको ईयरमार्क किया और चबूतरा बनाया उसका। तभी तो कुछ भी पैसे नहीं थे, तो 60,000 रुपये लगे उसके लिए, बड़े मुश्किल से इकट्ठा किए और चबूतरा बना दिया और आके कीर्तन किया बहुत अच्छी तरह से। अभी उसके बाद में यहाँ पर बहुत कथाएँ हो गई, बहुत यात्राएँ आई मेरी, बहुत सारे लोग आए, हमेशा कथा किया उधर बैठ के। तो कथा करने के लिए वो बनाया है बहुत सुंदर, कि इसके नीचे सदैव हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि पूजन होना चाहिए। और वैसे ही उधर भी एक ट्री है, वो भी कुछ 500 वर्ष पुराना है, वो भी अश्वत्थ का पेड़ है, बहुत दिव्य है। और इस साइड में एक बहुत पुराना आम का पेड़ है, इसके नीचे एक मिट्टी की झोपड़ी हुआ करती थी जब हमने ज़मीन खरीदी थी, बहुत सुंदर नेचुरल, उसमें होल्स भी थे ऐसे ईंटों के बीच में, गांव में होता है ना एक गैप रखते बीच में, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती थी, रस्सी खाटती उसके अंदर। मैं कई बार आके वहाँ पर विश्राम कर चुका हूँ, बहुत सुंदर दिव्य अनुभव। ऐसे अभी तो अंधेरा हो गया, उधर कोने में जाओगे ना लास्ट में एकदम, तो लास्ट में ऐसे ना ऐसे मिले हुए पेड़ हैं, ऐसे राधा रानी और कृष्ण भगवान का स्वरूप है वो, ब्लैक एंड व्हाइट ट्रीज आ देर, तमाल का पेड़ है और अश्वत्था का पेड़ है। अश्वत्था का पेड़ सफ़ेद होता है, सफ़ेद, तमाल का पेड़ का शाखा जो है ना वो काली होती है। तो ऐसा उनका ऐसा मिलन है पूरा, ऐसा अद्भुत जगह है, ये साधारण जगह नहीं है। तो इसके पीछे इतिहास ऐसा है कि 2005 से हमने यहाँ का कण कण छान मारा। कभी कभी क्रोध में आकर भी बात किया कि आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग इतना सेवा कर रहे हैं, आप एक जमीन नहीं दिला सकते उनको। उसके बाद में कितनी जगह देखी, किसी ने पिसाया में डोनेशन दिया, किसी ने पैनावली में बुला, किसी ने कहा इधर ले लो उधर ले लो हमारे घर से ले लो। हमने कहा आपको राधा रानी के पास चाहिए। 10 साल तड़पाया और दिया राधा रानी ने अपने ही गाँव में जमीन, है ना। तो अभी समझ में आ रहा है कि राधा रानी को यह जगह हम करे लिए हमारे लिए देनी थी, वो फिक्स होता है सब कुछ जो होता है, वो ऑलरेडी मैच इज फिक्स्ड, बट समय लगता है उसको समझने में। तो ये जो गांव है जिसमें हमारी ज़मीन है वो बरसाने में ही है, लेकिन बरसाने के चिकसोली गांव में है, बरसाना नगर 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 के रूप में है। हाँ, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, परगना कहते हैं, परगना, हाँ, नगर पंचायत है उसकी। और ये जो बरसाना है ना, ये हेमपीठ है, वो कमल का जो बीच की जगह होता है ना, हेमपीठ, वर्ल ऑफ द लोटस, वो बरसाना है। उसके गांव 8 गांव है, उसके 8 पंखुड़ियाँ कमल की जो है वो सखियों के राज्य है, उसमें सखियों का जन्म हुआ है वहाँ पर। तो ये जो गांव है, जो कमल की पंखुड़ी है, ये चिकसोली गांव है, चिकित्सापुर, चित्रा सखी, जो फोटोग्राफ लगाया ना कृष्ण के बाजू में रखा है, वो चित्रा सखी का मंदिर भी यहाँ पर है इस गाँव में। तुम्हारे प्रेमी भक्तों ने बताया कि चित्रा सखी का गांव है, तो चित्रा सखी का विग्रह भी यहाँ पर होना चाहिए। तो आपके खुशी के लिए बता दें कि राधा श्याम सुंदर की बहुत सुंदर दारू ब्रह्म, यानी क्या दारू ब्रह्म थी, लकड़ी की मूर्तियाँ मायापुर से बनकर आ गई हैं। चित्रा सखी का विग्रह भी बनाया गया है उन्हीं की प्रोपोर्शनेट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसमें नर्तकी माता जी उनको पेंटिंग कर रही है, उनके वस्त्रों का आयोजन कर रही है, उनके अलंकार वृंदावन ने बना रही है, और कई महीनों से हमारा वो काम चल रहा है। पहले तो 6 महीने मूर्ति बनाने में लगे पिछले साल, फिर उसको रिपेयरिंग थोड़ा किया, जाना आना मायापुर में हो गया, फिर उसके बाद में वृंदावन लाया, फिर पेंटिंग, बीच में पेंटिंग का कार्य बहुत ज़ोरों से चल रहा था, लगा था कि 6 महीने में सब रेडी हो जाएगा, लेकिन हमारी नर्तकी माता जी रोड पर गिर गई पत्थर से लड़फड़ा कर, और उनकी आँख, राइट आँख है ना, वो डैमेज हो गई। तो उसमें हमारे 6 महीने गए, उनके कई ऑपरेशन किए, बहुत ऑपरेशन किए। अभी ठीक है वैसे, लेकिन दृष्टि वैसे नहीं है, बीच में वो लेफ्ट आई में कैटरैक्ट हो गया उसी बीच में, तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया, लेंस डाला उसके अंदर। तो हमने माता जी को कहा, माता जी सब राधा रानी कंट्रोल में है, आप चिंता मत करो, फिर कैसे होगा, मूर्ति कैसे करूँगी मैं, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मतलब कुछ चिंता मत करो मूर्ति, आप निश्चिंत रहो, आप अपने आँखों का ख्याल रखो, आपके आँखें ठीक हो जाएंगी, जब आपको लगेगा ओके तब आप उसको पेंटिंग शुरू करना, बिल्कुल प्रेशर मत लेना। ऐसे एकदम रिलीज हो गई वो, शी फेल्ट सो कम्फर्टेबल। फिर मेरे पास अभी 6 महीने के बाद खुद आई कि मैं अभी शुरू करने वाली हूँ, आराम से, टेंशन मत लेना, आराम से करना, अपने को जो स्पीड आपको होता है उसमें करना, कोई जल्दी नहीं है। अस्पताल का उद्घाटन होने दीजिए, उसके 6 महीने बाद हम ठाकुर जी को लाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो फोटो रखेंगे, फोटो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो रखेंगे श्याम सुंदर जी का। कैसे है ना, कोई भी काम टेंशन में नहीं होता है भगवान का। भगवान का काम अगर आप टेंशन में करोगे तो उसका आगे का काम भी टेंशन में ही रहेगा सब। जैसे खाना टेंशन में बनाओगे तो टेंशन भी खाने के साथ में जाएगा उसमें, और खाने वाले को भी टेंशन मिलेगा। हाँ, जो भावना से आप बनाते हो वो भावना भी उसको परोसते हो भोजन के साथ, तो जो भावना में वो करते हो सेवा, वो सेवा भी उसमें चली जाती है, फिर वही वाइब्रेशन मिलता है लोगों को। इसलिए प्रेम से और शांति से भगवान की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल इत्मीनान से करनी चाहिए। एंग्जाइटी होनी चाहिए, लेकिन वो आपको साइकेट्रिक बनाने जैसे एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट कल्बिनेट इन टू यू बिकमिंग साइकेट्रिक। तो महाराज ने मेरा भी ऐसा ऑपरेशन किया, डोंट बी एंग्जाइटी, डू योर वर्क बट डोंट बी एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? आई एम द डूअर, क्यों नहीं हो रहा है? आई एम द डूअर, क्यों नहीं हो रहा है? बट एज सून एज यू से यू आर द डूअर, नो एंग्जाइटी, नो टेंशन। तो अभी भी वापस शुरू हो गया काम, बहुत सुंदर पेंटिंग हो रहा है, और उन्होंने कल हमको दर्शन दिया उसका, मूर्ति का। मैं अभी किसी को दर्शन दे नहीं सकते क्योंकि अभी तो बने नहीं वो, लेकिन कुछ डिस्कशन करने के लिए दिखाया। बहुत बहुत सुंदर विग्रह राधा श्याम सुंदर के, हम भी बहुत बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, कब आएंगे, कब प्रकट होंगे। लेकिन हम कोई जब उनको इच्छा होगी तब आएंगे, तब उनका स्वागत करेंगे। आपने देखा होगा ना, आपको किसी ने दिखाया क्या? यहाँ पर बीच में यज्ञ हुआ था ना, आपको पता नहीं, यहाँ पर वो आते ही आपने जब दो सीढ़ियों से आपने प्रवेश किया ना, तो दो सीढ़ियाँ है ना, तो जैसे अंदर आते हैं आप तो वो रिसेप्शन हॉल है पूरा, वहाँ पर यज्ञ हुआ, जो पूरा ऊंचा है ना, पूरा चारों तरफ से खुला है, वहाँ पर यज्ञ हुआ। उसके थोड़ा अंदर आएंगे आप तो वहाँ प्रभुपाद जी का स्थान है, और लेफ्ट टर्न लेंगे वहाँ मंदिर है। भक्तिविदान का मंदिर देखा आपने मुंबई का? वो ऐसा है ना, उसके तीन गुना मंदिर है ये, कम से कम ढाई गुना है, बहुत विशाल। किचन है उसके पीछे, ड्रेसिंग रूम है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। और वहाँ पर आएंगे हमारे ठाकुर जी, राधा श्याम सुंदर चित्रा सखी आएंगे। सब कुछ हो सकता है, हमारे जीवन में दर्शन होगा सब चीज़ का। सो यहाँ का प्रोजेक्ट जो है वो इस प्रकार से है, इसमें अभी जिस लेवल पे हम बैठे हैं वो ग्राउंड फ्लोर है। आपको लगा होगा आप चढ़ के आए, लेकिन वो जमीन के नीचे है, जमीन आप रोड से भी उतर के नीचे आए ना, तो हमारी भूमि जमीन से 6 फुट नीचे है, तो वो बेसमेंट है नीचे। वहाँ पर किचन होगा, वहाँ पर पार्किंग होगा, बहुत सारी सेवाएं होगी। ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ये ग्राउंड फ्लोर में सारी जांच का इंतज़ाम होगा। जिस तरफ आप बैठे हो ना, इस तरफ ये आई साइड है, ऑफ्थेल्मिक साइड। इसमें चार प्रकार की ओपीडी होंगी, और बहुत सारे ऑफिस भी होंगे। और उस साइड पे मेडिकल, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक और ऑर्थोपेडिक वगैरह मेडिकल साइड होंगे। वो भी हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, इस साइड का डेवलप कर रहे हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो 4 ऑपरेशन थिएटर होंगे, फुली इक्विप्ड, नाइस बिग साइज, स्टेट ऑफ द आर्ट। उसमें से 2 हम लोग एक्टिवेट करेंगे और 2 बाद में करेंगे, फेज 1 फेज 2 में। इस प्रकार से पहले माले पे 100 बेड होंगे, और इस माले पे भी आप जहाँ बैठे हैं ना, ये मेडिकल वार्ड है, लेकिन अभी हम पहले फेज में इसी को आई का वार्ड बनाएंगे, फिर आगे उसको शिफ्ट करेंगे। लेकिन ऑपरेशन तो ऊपर बनाया, ऊपर ही बनाएंगे उसको। इस प्रकार से अभी हम लोग वहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर, एक ओपीडी में मिलकर 3,000 ऑपरेशन साल में करते हैं। अभी यहाँ पर आएंगे तो पहले साल उतना ही करेंगे सेटल होने तक, फिर अगले साल से 6,000 ऑपरेशन होंगे, क्योंकि सुविधा बढ़ेगी तो ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं, और डॉक्टर भी आएंगे ज्वाइन करने के लिए। और आगे आगे करना है तो चारों ओटी अगर एक्टिवेट करेंगे तो फिर 5 साल के बाद में 17,500 ऑपरेशन हम कर सकते हैं इस बिल्डिंग में। आप लोगों को ये पूरा प्रवचन इस पे क्यों दे रहे हैं? इसका कारण ये है कि हम लोग रहे ना रहे, लेकिन हमारे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, अगली पीढ़ी, उनकी अगली पीढ़ी, उनकी अगली पीढ़ी के लिए सेवा के लिए कोई क्या कहते हैं सुविधा होनी चाहिए। हमने तो कैसे भी यहाँ वहाँ आश्रमों में इधर उधर ऑपरेशन बना के, थिएटर बना के, परमिशन लेके किया हमने 30 साल सेवा की, लेकिन ऐसे ही छोड़ेंगे तो फिर आगे सेवा कैसे होगी? तो ये सेवा का स्थान बना दिया है, सेवा का अधिष्ठान, फाउंडेशन। और हम चले जाएंगे सब लोग, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, अनेक पीढ़ियां यहाँ पर सेवा करेंगी, क्योंकि सेवा का अवसर है यहाँ पर। एक स्थिति बना के रखी, एक स्थिति है बिल्डिंग की और दूसरी स्थिति है भाव की, जो भाव आपको सबको यहाँ पर खींच के लाता है। हाँ, पता नहीं सब लोग बरसाने से कहाँ कहाँ से आते हैं, सब लोगों को आना है, तो वो भाव जो है वो बना कर रखा है जो लोगों को खींच रहा है, उसी भाव को बनाए रखना है और उसी को बढ़ाना है। एक में उद्देश्य उसका ये है कि सब लोगों को राधा रानी के चरणों से जोड़ना है, नहीं तो हम लोग ऑपरेशन नहीं करें तो कोई लाके ऑपरेशन करेगा उनका, लेकिन हम लोगों को, हमारे पीढ़ियों को, भक्तों को, संप्रदाय को, सब लोगों को राधा रानी के साथ में सेवा के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये इस प्रोजेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन आपके, हमने आपको समझाया। ये मत समझना कि हम आपके पैसे चाहते हैं और आपके बार बार एक ऑपरेशन, एक स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, ये सब जाते हैं, वो तो इसका एक 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 मामूली परिणाम है कि उसके धन आते हैं, लेकिन धन से अधिक आपका हृदय उसमें जुड़ना चाहिए। दिन रात आपको राधा रानी की स्मृति कैसे बनी रहेगी ये आपको देखना है। अगर वो हो गया तो आपका धन देना भी सफल है। अगर आपने चेक दे दिया और भूल गए, कोई सफल नहीं है वो चेक, सेवा तो हो गई लेकिन आपकी स्मृति नहीं बनी उससे। आपकी सेवा ऐसे होनी चाहिए जो आपने की है और करने वाले हैं और करते रहेंगे, इससे आपकी राधा रानी की और बरसाने की स्मृति जो है वो बनी रहनी चाहिए। आप बताइए, हम लोग आई कैंप में आते हैं, दीपोत्सव क्यों करते हैं? व्हाट इज द नीड? वो दीपोत्सव के माध्यम से आपके हृदय में ऐसी स्मृति बनी रहे कि बनी रहे, कभी तन्हाई में मायूस हो गए तो आपको दीपोत्सव आ जाना चाहिए, राधे राधे, है ना? इसके लिए बनाया सब कुछ, वो दृश्य, वो वातावरण, सब लोगों का कीर्तन, वो जो अनुभव है ना, वो वर्णन में, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते उसका, वो स्मृति में रहेगा आपका और आपको राधा रानी की याद दिलाते रहेगा, है ना? और उसका रिकॉर्डिंग क्यों किया हमने कि बिल्कुल भूल भी गए तो उसको ऑन करो, यूट्यूब पे जाओ और देखो, फिर कनेक्ट हो जाओ, फिर पुकारो राधे राधे, बोलो राधे राधे, सुन लो टेर हमारी, ओ ओ वृष भानु दुलारी, ओ वृष भानु दुलारी, ये हमारा भाग्य है बहुत। राधा रानी के साथ में सेवा के माध्यम से जुड़ जाना और उनकी स्मृति होना बड़े भाग्य की बात है। कहते हैं कि जब आपको राधा रानी की स्मृति होती है, निश्चित समझना कि राधा रानी भी आपकी याद कर रही है। जब बरसाने की स्मृति होती है तो निश्चित समझना बरसाना भी आपको याद कर रहे हैं। ये सब दिव्य बातें हैं, हृदय की बातें हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसे टेस्ट नहीं है। हृदय में अगर समझता है तो आपको समझ में आएगा। और ये जो संबंध है आपका राधा रानी का, ये आपको जीवन भर आपको साथ तारते तारते रहेगा और जीवन के अंत में भी तार देगा। देखो हमारे श्यामलाल प्रभु भक्ति वेदांत के कितने, 800-850 अभी के 400 4 ना, 2 थे वो, 4 हो गए। 800 में कैसे सब तड़पते हैं, तड़पते ही रहते हैं सब लोग, और ये भी इनके साथ तड़पते रहते हैं दिन रात, कॉन्स्टेंटली सेविंग लाइव्स, इतने बिजी हैं, लेकिन साल में एक बार बरसाना आते हैं, राधा रानी के दरबार में आकर दस्तखत दिए बिना, मत्था टेके बिना, कृपा किए बिना, सेवा किए बिना आगे का कार्य संपन्न नहीं होगा, क्योंकि आईसीयू में कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन कह सकता है, कौन कब कैसे उठेगा, कोई नहीं कह सकता, है ना? ये स्थिति में रहते हैं वो, पेशेंट भी गैस पे और डॉक्टर भी गैस पे, उनको पता है कि, उनको पूछो, उनको पता है कि आई एम नॉट द डूअर, उनको पूरा पता है आई एम नॉट द डूअर, ही इज द डूअर, शी इज द डूअर, उनको कोई तर्क की जरूरत नहीं, उनको पता है कब किसका विकेट गिरेगा, कोई नहीं कह सकता, हम खाली सहायता कर रहे हैं। कब फूल बरसेंगे, कब पेड़े मिलेंगे, कब डंडे बरसेंगे, कोई नहीं कह सकता। वो यहाँ पर आते हैं कृपा करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए। शिव जी भी यहाँ पर आते हैं, ब्रह्मा जी भी पत्थर बैठे बने हुए हैं। थोड़ा सा बता दें ब्रह्मा जी के बारे में आपको, मैं सोच रहा था बताऊंगा आपको। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारी रोज की साधना होती है, 16 माला, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, रोज सुबह जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, जो भी हमारी साधना है, किताब पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, हफ्ते में एक बार मंदिर जाते हैं, जो भी साधना है वो डेली वीकली मंथली है। एनुअल साधना जो कम टू बरसाना विदाउट फेल रिबोल, और एनुअल साधना मंथली हो जाए, फिर फोर्टनाइटली हो जाए, फिर डेली हो जाए, यही हमारी तमन्ना है। जब श्री जी बुलाएंगी अपने धाम में आश्रय देंगी, उसी का भी एक गोल बना के रखो कि अंतिम समय पर यहीं पर आकर प्राण छोड़ने हैं। ये भी मन में एक बार संकल्प कर लो तो श्री जी आपको बुला लेगी, अपने गोद में ही ले लेगी आपके पास, उनके पास। तो ये कैसा धाम है कि ब्रह्मा जो इस ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक हैं, उन्होंने 120,000 साल तपस्या की अपने प्रथम सत्ययुग में, अपने वाले अपने करियर के प्रथम सत्ययुग में 120,000 साल तप किया उन्होंने। पहले 60,000 साल तप किया, नो रिस्पॉन्स, फिर काम पे लग गए, फिर उसी युग के लास्ट 60,000 साल तप किया, तो भगवान ने दर्शन दिया। बोले क्या चाहते हो? बोले आपके और सखियों के, सखाओं के चरणों के रज चाहते हैं। तो बोले जाओ वृषभानुपुरम गत्वा, वृषभानुपुर में जाओ और पत्थर बनो। हमने अरे ये भी कोई तरीका है कृपा देने का, पत्थर बनो, हम तो चार भुजा वाले, चार शीश वाले रूप में आए हैं और कृपा चाहते हैं। कोई प्रश्न नहीं किया उन्होंने, प्रश्न मैंने किया, उन्होंने नहीं किया, वो तुरंत पत्थर बन गए। कितना आसान था सुनने के लिए ना, पत्थर बन गए। सोच के रखो, सोच के देखो कि आप पत्थर बन रहे हैं। सोचने में क्या आता है, पहले मैंने बताया आपको ना, मैंने सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोचो कि आप पत्थर बन रहे हो, बन गए, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, धूप में, छांव में, बर्फ में, आंधी में, तूफान में आप हो, लोग आपके ऊपर क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपको मालूम, उनको मालूम, और आप कुछ कह नहीं सकते उनको, मत करो। पापी लोग आएंगे, संत आएंगे, भरोसा नहीं किसी का। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? पापियों का भी चलेगा, कृष्ण आएंगे ना, बस नो प्रॉब्लम। हम भी जाते हैं उधर, उधर लैटरिन भी है, बाथरूम भी है ऊपर जयपुर मंदिर के पास, लेकिन ब्रह्मा जी खाए वो स्वयं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब पत्थर बने तो राजा श्याम सुंदर जी ने अपने सखाओं सखियों के साथ लीला करना आरंभ किया, तो ब्रह्मा जी ना मक्खन की तरह मुलायम हो जाते थे, भाव विभोर होकर, ही यूज्ड टू फ्लो इन एक्सटेसी। इसलिए वहाँ चरण चिन्ह बने हुए हैं, जब आते थे ना कृष्णा ऐसे, तो वो ऐसे मुलायम बन जाते थे, उनको पत्थर का सख्त जो है वो अनुभव नहीं होता था, उनको लगता था तो ये मुलायम मक्खन ही है, उसमें चल रहे, उसमें मटकी फूट के गिर रही है, उसे हथेली चाट कर खा रहे हैं, फिर हथेली के चिन्ह बन रहे हैं, जब वो जाते हैं तो वो पर वापस पत्थर हो जाते हैं, तो वो चिन्ह वहाँ पर बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए अनंत काल तक ब्रह्मा जी यहाँ पत्थर बन के बैठने को तैयार है। विश्व के सबसे प्रथम नागरिक है वो। अगर उन्होंने कभी सोचा ना कि मैं एक फैमिली पिक्चर निकालता हूँ, आई वॉन्ट अ फैमिली पिक्चर, तो कैसा होगा पिक्चर वो, सोच सकते हैं आप? हाँ, 84 लक्ष योनी, सबके पिताजी वही है, और हर एक योनी में अब जो जीव हैं, उसमें भी कई वैरायटीज हैं, सारे बैठ जाएंगे तो बेचारे कैसा फोटोग्राफ होगा वो, क्योंकि सब उनके फैमिली मेंबर हैं, हम सबके प्रपितामह हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अरे 4 बच्चे होंगे तो कितना गर्व होता है, देखिए 4 बच्चे, ये उनकी बीवियाँ, ये उनके 10 बच्चे, 15, टोटल 50 की फैमिली हमारी, हमारी खुद की फैमिली 50 की है बाय द वे, तो कितना गर्व होता है उसमें। लेकिन 50 की फैमिली क्या होती है ब्रह्मा जी के सामने, कितना गर्व होना चाहिए उनको, ऊपर शक्ति कितनी है। देखो आप ब्रह्मा जी का विचार करो, आप शंकर के साथ किसी राक्षस ने युद्ध किया है, सारे इंद्र को तो हर रोज युद्ध ही करते हैं सब लोग, कोई देव राक्षस पूछता नहीं उनको कौन सा अटैकिंग। तो कभी सुना आपने ब्रह्मा जी पर कोई आक्रमण किया, ब्रह्मा जी पर सावधान किया उसको, ब्रह्मा जी पर कोई किसी राक्षस ने आक्रमण नहीं किया, उनके लिए तप किया है, उनको प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव जी के लिए भी मतलब ने तप किया है, लेकिन उनको ही हाथ लगाने का प्रयास करके भस्म बनाने का प्रयास किया है ना, भस्मासुर ने प्रयास किया ना, बहुत तप किया, सर भी काटने लगा, फिर जब प्रसन्न हो गए क्या चाहिए, बोले जिसको हाथ लगाऊंगा उसको भस्म बना दूं। अभी जिन्होंने आशीर्वाद दिया है तो उसको ही हाथ लगाने का सोचते हैं कि मैं इसको हाथ लगाऊंगा, इसकी बीवी को अपनी बीवी बनाऊंगा। ऐसे लोग शिव जी को मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मा के सामने ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, सब डरते हैं ब्रह्मा जी से, एक ब्रह्मा जी और एक नारद मुनि, सब दंडवत करते हैं उनको, कंस रावण सब लोग, कभी उनका अपमान नहीं किया किसी भयंकर राक्षस ने। तो वो सबके पिताजी ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि के पिता भी ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव जी के भी ग्रेट ग्रैंडफादर है वो। ऐसे ब्रह्मा जी पत्थर बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं, क्योंकि आज भी लीला चल रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण आए और चले गए, लीला समाप्त हो गई, उसको नैमित्तिक लीला कहते हैं। निमित्त का मतलब क्या है, कुछ निमित्त है उसका, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए, रावण को मारने के लिए राम आए, ये निमित्त है उसका। तो उसकी एक शुरुआत है और उसका एक अंत है, वो एक स्क्रिप्ट है उसका पूरा, उसको कहते हैं नैमित्तिक लीला। लेकिन एक होती है नित्य लीला, नैमित्तिक लीला शुरू होती है समाप्त होती है, और नित्य लीला चलती रहती है उधर। जैसे मोरकुटी जो है ना, वहाँ पर भगवान मोर बन के नाचे थे, लेकिन आज भी अनंत विविध प्रकार से मोर मोरनिया भगवान और राधा रानी बनकर वहाँ नाचते रहते हैं नित्य। नैमित्तिक लीला हुई और समाप्त हो गई, लेकिन नित्य लीला चल रही है। तो नित्य लीला आज भी चार पर्वतों पर चल रही है, ब्रह्मा जी आज भी उसका अनुभव ले रहे हैं। हमको तो लैटरिन दिखाई पड़ती है, हमको सुखे हुए पेड़ दिखाई पड़ते हैं, हमको क्या क्या दिखाई पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा जी को तो दिव्य वृंदावन ही दिखाई पड़ता है, राधा रानी कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं, और रोज दोलायमान होते रहते हैं, वो उनका अनुभव करते हैं, ये उनका अनुभव करते हैं, इनके चरणों के जल उनके सर पर पड़ती रहती है। फिर रज का महत्व आया ना, वो रज के लिए ही 120 साल तपस्या किया, हम लोग 12 घंटा उपवास नहीं कर सकते, 120,000 साल तप किया बिल्कुल पेशेंस के साथ, 60,000 किया, रिजल्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, स्टार्ट वर्किंग, उसका दोबारा प्रयत्न किया। और भगवान ऐसे क्या कहते हैं ना उसको, टेनेसिटी मतलब जो प्रयत्न पूर्वक सहनशीलता पूर्वक निश्चय पूर्वक विश्वास पूर्वक अपनी तपस्या जारी रखता है, वो भगवान उसको दर्शन देते ही हैं। और यहाँ पर है ना वो वातावरण है बरसाना में राधा रानी की उपस्थिति से, कि वो वातावरण में जो नास्तिक भी होगा ना वो धीरे धीरे भक्त बनेगा, ऐसा पावरफुल वातावरण है यहाँ पर। यहाँ पर आने से एकदम से चार्ज होते, जैसे जंग लगा हुआ किला है ना वो पड़ा रहता है, लेकिन चुंबक के साथ में आएगा तुरंत शिंद लगता है, अपने आप को ऐसे बना देता है सर्कल के अंदर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, दिव्य चुंबकीय क्षेत्र, डिवाइन मैग्नेटिक फील्ड है ये, और हमारी आत्मा जो है वो किले की तरह है, जैसे इसके अंदर आती है चार्ज हो जाती है पूरी, दिव्य भावनाओं से हम लोग विभोर हो जाते हैं यहाँ पर आने के बाद। जो बम्बई में 8 घंटा काम करने के लिए ये सुपरवाइजर लोगों को बहुत धक्का मारना पड़ता है, करे करो करो क्या करते हो, सो रहे हो क्या, क्या मेमो दूँ क्या आपको, एक हाफ डे सीएल काट दूँ क्या तुम्हारी, से बहुत सारे धक्के मारने पड़ते हैं। वो लोग यहाँ पर आकर 12-12-15 घंटा ऐसे काम करते हैं, आपको लगता है कि इतना आईडी दिखा तो वही है क्या, तो मुंबई में वही है ना, तो हरे नाम तो वही है, फोटो भी वही है, फिर वो क्या हो गया। हाँ, वो राधा रानी के धाम का प्रभाव है, और मैं नाम नहीं लेता हूँ किसका, लेकिन ऐसे कुछ फेमस लोग हैं हमारे हॉस्पिटल में जो वहाँ पर धक्का मारते हैं, धक्का खाते हैं, और यहाँ पर 15-15 घंटा काम करते हैं। तो मैं पूछता हूँ उनको कि क्या यहाँ पर है, बोलते प्रभु जी इस जगह पर इतनी शक्ति है ना, नींद भी कम में फ्रेश हो जाते हैं और चकाचक रहते हैं। कुछ लोग फॉरेन से आते हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए, गल्फ से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, मतलब यहाँ पर आने के बाद में एनर्जी ऐसी मिलती है ना कि बहुत कम नींद में आदमी फ्रेश हो जाता है और सेवा करते रहता है। इसलिए हमारी इच्छा है कि ऐसा दिव्य धाम में उसकी दिव्यता का परिचय नहीं होगा किसी को, तो कैसे अनुकूल बनेंगे हम उस परिवर्तन के लिए। बात शुरू वहां से हुई थी ना हमारी आज के कथा की। कि दिव्य तो भूमि है ही, लेकिन हमारी चेतना उसके अनुकूल नहीं बनी तो धाम अपनी जगह पर रहेगा, हम अपनी जगह पर रहेंगे अनटच्ड। हमारी इच्छा यह है कि जो भी यहाँ पर आए हमारे गुरु जी के नेतृत्व में यहाँ पर सेवा करें, सबका हृदय परिवर्तन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का राधा रानी के अनुकूल, श्याम सुंदर के अनुकूल होना चाहिए, उनकी कृपा के पात्र होने चाहिए। क्योंकि गुरु जी का सहारा तो लिया है, उनके नेतृत्व में सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चेतना में करो कि राधा रानी आप पर कृपा बरसाएं, तो जीवन धन्य हो जाएगा आपका। और जीवन में रखा ही क्या है, जीवन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, उनके कल्याण के विषय में खुद बहुत त्याग करते हैं, और अंड में क्या है, सब लोग रोते हैं, सब बेकार गया, इतनी मेहनत की सब बेकार गया। लेकिन राधा रानी की सेवा करोगे, कभी वो व्यक्ति बोलेगा नहीं बेकार गया, व्यर्थ हो गया, बोला जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया, ऐसा आप बोलेंगे। बाकी परिवार से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन राधा रानी की अगर सेवा किया आपने बहुत लंबे साल तक सच्चे हृदय से, तो आप जीवन के अंत में बोलेंगे बहुत भाग्यवान है हम, उनको बहुत अच्छा संग मिला, अच्छी सेवा मिली, जीवन धन्य हो गया हमारा। जितने जल्दी आप परिचित होंगे, संपर्क में राधा रानी के आएंगे, उतना आपका जीवन धन्य है। और हमारे ये भाग्य था कि हम विद्यार्थी दशा से ही यहाँ पर जुड़ गए। सबसे पहले 86 में आए थे, कितने साल हो गए अभी बोलो, 38 ईयर्स हो गए यहाँ पर आके। तो पूरा जीवन जो है ना वो इसमें गया, इसलिए हमको कितने भी कष्ट जीवन में होते रहेंगे, हुए, लेकिन हमको कोई इसका शिकवा नहीं, गिला नहीं मन में, राधा रानी की सेवा मिली यही हमारा धन है। 92 में कैंप में प्रभु जी भी थे उसमें, तो कितने बदलते हुए दौर देखे, लेकिन राधा रानी कांस्टेंट रही उसमें, ये सबसे बड़ी भाग्य की बात है। राधा रानी ने किसी को एक बार आपने सेवा किया राधा रानी के दरबार में आकर, तो राधा रानी आपको छोड़ेगी नहीं कभी, आप भूल जाएंगे उसको, लेकिन वो नहीं भूलेगी आपको कभी। इसे एक बार आप आए हो, हृदय से यहां पर सेवा करो, कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा भूल जाओ उसको, लेकिन सेवा हृदय से करो। आप इस निष्ठा के साथ सेवा करो कि आपकी सेवा वहां पर रजिस्टर हो रही है निश्चित रूप से, आप भूल जाएंगे लेकिन रजिस्ट्री वाला नहीं भूलेगा, राधा रानी सब याद रखती है किसी को, हर चीज को। सारे दुख आपके मिट जाएंगे जीवन के, इतने कष्ट पीड़ा आपको हो रही है, मन से हो रही है, भावना से हो रही है, शरीर से हो रही है, बुद्धि से हो रही है, धन से हो रही है, होते रहेंगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि राधा रानी आपको इन सबसे ऊपर लेके जाएगी। सब नीचे के लेवल पे सब होता रहेगा, लेकिन आपको ऐसे सर पे लेके जाएगी जहाँ केवल आनंद का अनुभव होगा, और आपको पता चलेगा ये जो प्रपंच है इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, क्या सोचा था और क्या हो रहा है कोई चिंता की बात नहीं, भूल जाओ उसको। जो असत्य है उस पर ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत क्या है, वाई यू टू मेडिटेट ऑन द थिंग दैट इज नॉट ट्रूथ, फॉरगेट इट, भूल जाओ उसको, सारा हृदय जो है तन मन बुद्धि आत्मा जो है राधा रानी को दे दो, कभी नुकसान नहीं होगा आपका, द इन्वेस्टमेंट विल नेवर फेल एवर, श्रद्धा रखो इस बात पर। ये भूमि राधा रानी की भूमि है, स्वयं कृष्ण भी यहाँ पर लालायित होकर आते हैं, नतमस्तक होकर आते हैं, हमारे आराध्य भगवान, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, वो भी यहाँ पर नम्र होकर आते हैं कृपा प्राप्त करने के लिए। हम लोग बड़े भाग्यवान लोग हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात याद रखना कि राधा रानी सबका आश्रय है, वो आश्रय विग्रह है, यहाँ तक कृष्ण भी आश्रय लेते हैं उनका, तो हमारा सबका भी आश्रय वही है, सबका अंतिम होम जो है वो राधा रानी के चरण है। प्लीज हैव फेथ एंड कम। हमने हमारे डॉक्टर साहब को बोला, प्रभु जी एनी टाइम वेलकम, प्लीज कम, राधा रानी इज वेटिंग फॉर यू। ऐसा है, जिसके हृदय में इच्छा होगी राधा रानी उसको सेवा देगी, अपने पास रखेगी, कृपा करेगी, लाड़ करेगी, दुलारेगी, प्यार करेगी, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी सांसारिक स्तर पे यशस्वी हो अयशस्वी हो, हु केयर्स एंड वाई शुड वी केयर, वो तो कर्मों का खेल है, वो तो आता आता जाता रहता है, उसमें आप बदल भी नहीं कर सकते हैं, ना सुख को रोक सकते हैं, ना दुख को टाल सकते हैं. तो वाई शुड यू वर्क ऑन दैट? जस्ट सर्व राधा रानी एंड कृष्णा, एंड राधा रानी समय पर सुख देगी, समय पर दुख देगी. परवाह मत करो, सेवा मत छोड़ो उनकी. बस दूर रहोगे, यहाँ से जाना पड़ रहा है, उनको याद करो, उनके मंदिर की याद करो, उनकी सेवा की याद करो, दीपोत्सव की याद करो, भक्तों के संग की याद करो, यहाँ के प्रसाद की याद करो. यही जीवन है, बाकी बाकी सब कुछ झूठ है. इसके बीच वाला जो फिल इन द ब्लैंक है ना, वो सब झूठ है. ये एक सत्य है. सही लग रहा है आपको मैं बोल रहा हूँ? नहीं तो लगेगा प्रभु जी बाबड़े है गए. कितने देर से बक रहे हैं, क्या पतों ने कहा बक रहे हैं. ओके, जय जय श्री राधे श्याम.